आपने बहुत सी इंडस्ट्री जैसे गोदरेज, अमूल, हिंदुस्तान लिमिटेड आदि में भी बहुत से अपने व्यक्तित्व दिए हैं। ऐसी ईश्वरीय रची हुई महान विभूति आज हम सबके बीच में है, तो आज हम सब आपसे कर्मा फिलॉसफी विषय पर सुनेंगे। अंत में मैं उषा दीदी जी के लिए दो लाइन कहना चाहूंगी। सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं। जरा गौर से देखो हमारी दीदी जी को, जरा गौर से देखो हमारी दीदी जी को, दीदी जी हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। पिछले दो दिनों से आप सभी ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में ज्ञान की मधुर बातें अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं और आध्यात्मिकता की बातें जरूर गुह्य होती है, वास्तविक जीवन के साथ जुड़ी होती है और कई अनसुलझे प्रश्नों का जवाब देती है। ऐसे ही आज का ये विषय है कर्म फिलॉसफी। दुनिया के अंदर भी मनुष्य को कर्मों को लेकर के ही बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये कर्म का फल क्या है, जीवन में ऐसा क्यों होता है, कई प्रश्न कर्मों को लेकर के मनुष्य को मुंझाते रहते हैं। कर्म सिद्धांत को हम सभी जानते हैं कि कर्म सिद्धांत यही कहता है कि जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। ये कर्म सिद्धांत है और इसीलिए कभी भी उस कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन में कोई भी कर्म के लिए कोई इंसान न्याय कर पाए या न कर पाए, लेकिन उसका अपना कर्म न्याय जरूर करता है, भले आज नहीं तो कल। कई बार दुनिया में लोग ये भी मानते हैं कि भगवान हर कर्म का हिसाब करता है। वास्तव में भगवान को हिसाब करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य के अपने कर्म ही उसका हिसाब करता है ना। भगवान ने ये सिद्धांत हम सभी को समझा दिया है, ये सिद्धांत है। इसको ध्यान में रखते हुए हर कर्म करते चलो, परंतु मनुष्य कभी कभी जब ये सिद्धांत भूल जाता है, और क्योंकि इस सिद्धांत के हिसाब से फल मिलने का अपना समय होता है, कितना इंटेंसिटी से किया गया है उस हिसाब से वो फल प्राप्त होता है। जिस तरह से प्रकृति के अंदर भी जब बीज बोते हैं तो हर एक बीज की पोटेंशियल अपनी अपनी है। जैसे मिर्ची का बीज बो, 3 महीने में फल मिल जाएगा। अनाज का बीज बो, 6 महीने में फल मिलेगा। फलों का बीज वो साल 2 साल के बाद फल मिलना चालू होगा। तो नारियल का बीज वो 10 साल के बाद भी फल मिलेगा। तो हर बीज के फल देने की पोटेंशियल अपनी है। ठीक इसी तरह मनुष्य के जो कर्म है, कितना इंटेंसिटी से वो कर्म हुआ है, उस हिसाब से उसका फल मिलने का समय होता है। इसीलिए व्यक्ति जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो कभी कभी मुख से यही निकलता है, मैंने इस जन्म में तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए, पता नहीं कौन से जन्म का फल है। तो कोई कर्म के बीज ऐसे हैं जो इसी जन्म में प्राप्त होता है फल, कोई कर्म के बीज ऐसे हैं जो एक दो जन्म बाद भी मिलता है, कोई कर्म के बीज ऐसे हैं जो 10 जन्म बाद भी मिल सकता है। डिपेंड्स कि कितनी वो इंटेंसिटी है उस कर्म की, उस हिसाब से उसका फल भी प्राप्त होता है। और इसीलिए व्यक्ति कभी कभी इस सिद्धांत को भूल जाता है और सोचता है उसको कोई फल मिलने का है ही नहीं। समय जब आता है, या जिसको कहा जाए समय का योग जब होता है फल प्राप्त करने का, उसी समय वो मिलता ही है। तो कर्म को अगर देखा जाए तो सबसे पहले कितने प्रकार के कर्म है। मनुष्य जीवन के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले प्रकार के कर्म है जिसको कहा जाता श्रेष्ठ कर्म, दूसरे प्रकार के कर्म है जिसको कहा जाता अकर्म, तीसरे प्रकार के कर्म है जिसको कहा जाता पुण्य कर्म, और चौथे प्रकार के कर्म है जिसको कहा जाता पाप कर्म या विकर्म। विकर्म यानी विकृत कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म समय प्रति समय हम जाने अनजाने करते रहते हैं। उसमें जो सबसे पहले बताया बीज बोने का कर्म, श्रेष्ठ कर्म, ये श्रेष्ठ कर्म जो है हमेशा श्रेष्ठ फल ही देता है। ये बीज जब बोया गया है बहुत उत्तम बीज होता है। और ये इसका आधार क्या है, तो जिस तरह एक किसान जब बीज बोता है तो बारिश देखता है कि पानी किस तरह से मिलेगा, धरनी की क्वालिटी देखता है, बीज की क्वालिटी देखता है, वातावरण कैसा है वो भी देखा जाता, नमी कितनी है, इन सब बीज बोने समय ये ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ भाई सूर्य की रोशनी कितनी मिलनी है ये भी इंतजाम करता है कि कोई पक्षी कीड़े उसको लग ना जाए, उसका भी इंतजाम कर लेता है। खाद पानी सब व्यवस्थित डालता है। ठीक इसी तरह जब मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है तो श्रेष्ठ कर्म के लिए धरनी कौन सी चाहिए, तो धरनी चाहिए चरित्रवान जीवन। जब चरित्रवान जीवन है उस धरनी में अगर ये बीज बोया गया श्रेष्ठ कर्म का, उत्तम कर्म का, साथ ही साथ उसको खाद भी दी गई मर्यादाओं की, है ना, ये खाद दी गई, संयम नियम मर्यादा इसकी खाद दी गई। तीसरा, जैसे उसको धूप और पानी भी मिल रहा है, अर्थात कर्म करते समय ईश्वर की शक्ति की धूप, ईश्वर की याद में उसकी शक्ति प्राप्त करके कर्म करना, और उसको पानी भी मिलना अर्थात उसकी परवरिश करना, उसको फॉलो अप करना उस कर्म को। कितना फॉलो अप हमने किया है वो श्रेष्ठ कर्म को, ऐसा ना हो कि उसमें कीड़ा लग जाए। कीड़ा कौन सा लग जाता है? अभिमान का कीड़ा लगता है। श्रेष्ठ कर्म करने के बाद भी कई बार किसी को घमंड आ गया, माना कीड़ा लग गया, या संग के प्रभाव में आ गए, तो चिड़ियाएं जैसे झूठा कर देती है तो ये संग का प्रभाव उस फल को खराब भी कर लेते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान देते हुए जितना ईश्वरीय स्मृति के अंदर, आत्मिक स्मृति के स्थिति में ये कर्म किया जाता, उसको कहा जाता श्रेष्ठ कर्म। आध्यात्मिकता के परवरिश जब मिलती है तब ये श्रेष्ठ कर्म करना आसान होता है। चीजों को देखना नहीं पड़ता है, अपने आप वो माहौल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये कर्म तभी होता है जब परमात्मा आकर हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देता है, तब हमें एक अटेंशन आ जाता है अपने कर्मों के ऊपर। दूसरा जो कहा अकर्म, अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना। अकर्म का मतलब ये है जिस कर्म का फल नहीं है। ऐसे भी कई कर्म है जिसके फल नहीं होते हैं। कैसे? जैसे बीज बोना एक कर्म है। मान लो मैंने धरनी में एक बीज बोया, आम का बीज बोया, उसकी परवरिश किया मैंने, उस बीज से पौधा निकला और वो पौधा धीरे धीरे वृक्ष बना, उस वृक्ष के ऊपर फल लगे, आम लगा, मैंने आम तोड़ करके खाया। दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं, बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैं करती हूं। दोनों कर्म में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? अच्छा, बीज बोना माना किसी को देना, फल खाना माना खुद लेना, और दोनों कर्म के कर्म में क्या अंतर है?
अपने काम का अच्छा प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ना, तो करो तो कहीं होगा, तो दूसरों का भी कुछ भलाई नहीं होगा।
अच्छा, मैंने बोया, मैंने एक बार खाया, मान लो कि मैंने बोया और भावना ये रखी इसका फल कोई भी खाए, तो क्या अंतर है इस दोनों कर्म में? हाँ, बीज बोने का जो कर्म है ये श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल मिलते हैं, और वो भी हर सीजन, रिकरिंग, इसलिए उसको श्रेष्ठ कर्म कहा गया। लेकिन फल तोड़ के खाया, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिली, उसका दूसरा कोई फल नहीं मिलता है। बीज बोने का जो कर्म है उसके 100 फल मिले, और वो भी हर सीजन मिलता ही गया, इसलिए ये श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन फल तोड़ के खाया, संतुष्टि मिली, पूरा हुआ, उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि वो फल खाने का कर्म है। ठीक इसी तरह अकर्म माना फल खाने का कर्म, जिसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है, वो वहां समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को सारी भगवत गीता में 3 योग विशेष सिखाए। गीता को 3 भाग में बांटा गया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, है ना। तो कर्म के बारे में बार बार उसको जागृत किया है अर्जुन को, और उसमें भी श्रेष्ठ कर्म करने की विशेष प्रेरणा दी है। कई बार भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति बताता हूं। कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म माना श्रेष्ठ कर्म, उसका जो फल मिला और वो फल खाने का कर्म वो अकर्म, और जो विकृति के माध्यम से किया गया वो विकर्म, पाप कर्म जिसको कहा गया है। लेकिन तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, समझने वाली है, कि जिसमें कहा गया कि हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, उसको कहेंगे बुद्धिमान योगी। भावार्थ ये कि जो श्रेष्ठ कर्म किया और उसका फल मिला, ये तो सब कोई करते हैं समय अनुसार, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अकर्म में कर्म, अकर्म में श्रेष्ठ कर्म करे। भाव ये कि जैसे बीज बोना श्रेष्ठ कर्म है, और उसके फल जब निकले तो फल तोड़ के खाना ये कर्म हो गया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म में कर्म, यानी खा करके बीज फेंक दिया ये नहीं, उस बीज को पुनः रोपित करे। तो अकर्म में श्रेष्ठ कर्म, उसको कहा जाता बुद्धिमान योगी, कि जिसका फल कोई भी खाए, मैं रहा नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन उसका फल किसी से किसी को भी प्राप्त होता रहे, ये भावना से वो कर्म करना, ये है बुद्धिमान व्यक्ति। ये गुह्य गति बताई। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक सेठ जी था, उसके 3 बेटे थे, 2 बेटों की शादी हो गई, तीसरे बेटे की शादी होने वाली थी। तीसरी बहू जब घर में आई शादी करके, तो पहली 2 बहू ने ससुराल का नियम समझा दिया उसको, कि ससुराल का नियम क्या है, हमारे ससुर जी का नियम क्या है, तो उसको बताया गया कि ससुर जी का ये कायदा है, नियम है कि दान नहीं करना, गलती से भी दान नहीं करना। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा भी नियम होता है? क्योंकि जिस परिवार से वो आती थी उसके पिता ने उसको सिखाया बेटा दान करते रहना, तो उसको बड़ा अजीब लगा। लेकिन अभी जिस घर में आ गई है तो उस घर का नियम कायदा फॉलो करना ही पड़ेगा। कहा ठीक है, नहीं करेगी। अब हुआ ऐसा कि कुछ समय बीता, 6-8 महीने बीत गए, बड़ा बंगला था उनका, उस बहू का कमरा ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पर, वो कपड़े सुखा रही थी गैलरी में। उतने में गेट पर एक फकीर आता है और फकीर ने कहा कुछ दे दो। उसने कहा 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। तो ऊपर से छोटी बहू ने जवाब दिया, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। ये सुनकर वो फकीर चला गया। अब नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी कि फकीर ने कहा कुछ दे दो और बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। अरे किस दिन इसको बासी खाना खिलाया? ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, किस दिन इसको बासी खाना खिलाया? अपने घर में तो नियम ही नहीं है बासी खाना खाने का, चाहे फेंक देंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो उसने ऐसा क्यों कहा, और वो भी एक फकीर को? आज फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, उसने तुरंत ही अपने समधी को फोन कर दिया और कहा भाई आपकी बेटी को आप ले जाओ, हमको ऐसी लड़की हमारे घर में नहीं चाहिए। पिता बड़ा परेशान, ऐसा क्या हो गया जो एकदम कहा अपनी बेटी को ले जाओ, ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए? मेरी बेटी तो इतनी संस्कारी है, वो कभी ऐसा वैसा कर नहीं सकती है, फिर ये क्या हो गया? अब किससे पूछे? वो जमाना था जब कहा जाता कि डोली जाए और अर्थी निकले। आज का युग होता तो पिता जाकर ले भी आता। पिता बड़ा परेशान हो गया, आखिर वो सोचा कि पंचों के पास जाता हूं। तो गांव में पंच होते थे, पंचों से जाकर के मिला कि भाई आपकी मदद चाहिए, आप तो मेरी लड़की को जानते हो, हर रीति से संस्कारी है। लेकिन आज उसके ससुर का फोन आया कि लड़की को ले जाओ, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। पंचो ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम एक काम करते हैं, सेठ जी को ही बुलाकर पूछते हैं क्या हुआ। सेठ जी को बुलाया गया, उनको पूछा भाई ऐसा क्या हो गया जो आपने ये संदेशा भेज दिया? तो उसने बताया कि एक फकीर आया, उसने मांगा कुछ दे दो, तो इसने कहा कि बासी खाना हम खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे, हमारे घर में नियम ही नहीं है बासी खाना खाने का। फिर ऐसा कैसे कह दिया उसने किस दिन हमने बासी खाना खिलाया? आज फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेंगे, तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? तो पंचों ने कहा, एक काम करते, लड़की को ही पूछ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लड़के को बुलाया गया, लड़के से पूछा, भाई ऐसा क्यों कहा कि बासी खाना खा रहे, कौन से दिन बासी खाना खिला? तो उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्षमा चाहती हूं। परंतु वो फकीर आया और उसने कहा, तीन जन्म का भूखा, कुछ दे दो। उसके जवाब में मैंने ये बात कही। उसने ये कहा, तीन जन्म का भूखा हूं, मतलब पहले जन्म में उसके पास होगा लेकिन उसने दान ही नहीं किया, तो फकीर बना। अब फकीर के पास क्या होगा? उसने कोई दान ही नहीं किया, तो इस जन्म भी फकीरी का मिला उसको। अब ये जन्म में भी नहीं करेगा तो आगे का जन्म भी ऐसा होगा, ये समझ उसको आ गई। इसलिए उसने कहा, कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं भी कुछ दान करूं, कुछ बीज बोऊं। परंतु हमारे घर में नियम है दान नहीं करना, इसीलिए मैंने उसको कहा, ये जो तुम बंगला देख रहे हो, गाड़ियां देख रहे हो, ये पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल खा रहे हैं, तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमें भी तेरी तरह उपवास ही करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, यानी फल जो मिला है, उस फल मिलने का जो हम खाने का भोगने का कर्म कर रहे हैं, उसमें भी बीज बोते जाए, उससे भी बीज बोते जाए, उसको कहा गया बुद्धिमान व्यक्ति। बीज बोया है तभी तो मिला है इतना अच्छा, ये जन्म अच्छा मिला है, धन धान्य से संपन्न है, ये फल खाने का कर्म हो रहा है, यह कर्म है, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है खाने का, लेकिन हाँ उसमें अगर बीज बो दिया, उससे उस फल से ही बीज बो दिया, तो क्या होगा, कई जन्म है ना, उसको कहा जाता बुद्धिमान व्यक्ति। कितनी गहरी बात बताई गई है। आज का इंसान इसीलिए कर्म तो कर लेता है, फल भी प्राप्त कर लेता है, भोग भी लेता, कर्म भी हो जाता, पुण्य कर्म अर्थात किसी को सुख देने का काम, जिससे कि पुण्य भी प्राप्त हो और दुआएं भी प्राप्त हो, है ना, ये भी जरूरी है, पुण्य कर्म करना भी जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जहां दान करता है वही उसको प्राप्त होता है। कोई हॉस्पिटलों में दान करता है तो अगले जन्म में उसकी हेल्थ अच्छी होती है, कोई एजुकेशन में दान करता है तो उसको बुद्धि अच्छी होती है, कोई धर्मशालाएं खोलता है, कईयों को सुख देता है पुण्य का, तो उनको दूसरे जन्म में रहने का स्थान अच्छा, घर अच्छा मिलता है। जिसमें दान करे, है ना, ये पुण्य कर्म है कि जिस पुण्य कर्म का फल भी उसको वैसा ही, इसलिए कहा जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, है ना। ये पुण्य कर्म है। और चौथा जो है जिसको कहा गया पाप कर्म, विकर्म, विकृत कर्म, जो विकृति के माध्यम से किया गया, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, है ना, स्वार्थ, लोभ, मोह, अभिमान को लेकर के, ये विकृत कर्म है। तो जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, उसको लेकर के जो भी मनुष्य कर्म करता है, ये विकर्म हो जाता है, या ये पाप कर्म के बीज है। और ये पाप कर्म के बीज भी उसको भोगना ही पड़ता है। जिस तरह पुण्य कर्म का फल अगर प्राप्त होता है तो पाप कर्म का भी मिलेगा। इसीलिए शास्त्रों में एक कहानी आई, सत्य घटना भी है, कि महर्षि अपने, जिसने रामायण अपने लिखा, हाँ, वाल्मीकि जी, हाँ, कि वाल्मीकि जी तो बहुत बड़े लुटेरे थे, और लुटेरे थे तो जब लूटते थे तो एक बार एक महात्मा जी को पकड़ लिया उन्होंने, कहा दे दो जो भी हो आपके पास। तो कहा तुम ये कर्म किसके लिए कर रहे हैं? कभी मुझे भी अपने परिवार को पालना होता है, इसलिए कर रहा हूं। तो कहा पहले पूछ के आओ कि परिवार वाले इस कर्म में साथी है, जब भोगने का समय आएगा तो क्या वो साथी बनकर भोगेंगे? क्यों नहीं भोगेंगे? का पूछ के तो आ। जब परिवार वालों से पूछने गया तो हरेक ने क्या कहा? मना कर दिया, भाई तू कर रहा है तू भी भोगेगा, हम क्यों भोगे तेरे पाप कर्म का फल? सबसे पूछा, एक एक से पूछा, हरेक ने मना किया। तो जीवन परिवर्तन हो गया कि जब मेरे पाप कर्म में कोई भागीदार ही नहीं बनना चाहते हैं तो क्या जरूरत है मुझे ये पाप कर्म करने की? ठीक इसी तरह मनुष्य भी इस अज्ञानता में कई बार आ जाता है कि मेरे बच्चे के बच्चे भी खाएंगे, इतना इकट्ठा करके जाऊं, परंतु जरा पूछ तो लो क्या वो आपके पाप कर्म में भागीदार बनेंगे? बनेंगे? किसके लिए कर रहे हैं? तो जो पाप कर्म हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? उस वो लोभ करके इकट्ठा किया, खुद सुख नहीं लिया, और वो बच्चे आपके पाप में भागीदार बनने वाले नहीं, क्या ये समझदारी है? क्या कहेंगे? ये समझदारी है? हाँ, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहा है ये इंसान, कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ, दूसरी बात कहा जाता है कि ये जन्म में आपके बच्चे बने, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, ये जन्म में आपके बच्चे बने, है ना? ये जन्म के बाद तो फिर पता नहीं है, उनका रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, तो एक जन्म के लिए उनको सब कुछ देने के लिए, और जो आपके पाप में भागी भी नहीं बन रहे उनके लिए कर रहे हैं? ये कहां तक की समझदारी है। तीसरी बात, हर आत्मा का अपने कर्मों का हिसाब किताब अपना है। जितने भी जन्म लेकर के आया, सब जन्म में आपके साथ नहीं था, यही जन्म में आपके साथ था। जो लेन देन थी वो लेन देन पूरा करने के लिए आया, उसके लिए आप पाप कर रहे हैं। अब अगर वो चीज उसके भाग्य में नहीं है, क्योंकि उसका भी अपना कर्मों का हिसाब है, अगर वो चीज उसके भाग्य में नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा? उसको तो मिलना ही नहीं है, कोई और लूट के ले जाएगा। उसके नसीब में भी तो होना चाहिए, आपके साथ उतना कार्मिक अकाउंट होना चाहिए कि आप जितना इकट्ठा करो उसको मिले भी। लेकिन अगर उतना कार्मिक अकाउंट नहीं है तो क्या होता है, कई बार बच्चे बिछड़ जाते हैं माँ बाप से, जिसके लिए इकट्ठा किया वो गलत रास्ते पर चला गया, दूसरों को लुटाता रहा, तो क्या हुआ भाई, उसके भाग्य में ही नहीं था। चोर आकर लूट के ले गए, सारा खाली कर दिया उनको। भूकंप हुआ, जितना आपने जमा किया था वो करोड़पति एक दिन में रोड़पति हो गया। नसीब भी तो होना चाहिए उसका। तो जिसके लिए मैंने इतना पाप किया उसके भाग्य में भी तो होना चाहिए। अगर उसके भाग्य में नहीं है, तीसरा ही कोई ले जाएगा, और वो पाप कर्म की भोगना आपको भोगनी है। मौज करने वाला मौज कर रहा है ले जा करके। तो इसीलिए कर्म की गति बड़ी गुह्य है। ये जो कहा गया है ऐसे नहीं कहा गया है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों ने सोचा कि गांव में इतनी कमाई होने वाली नहीं है, क्यों नहीं हम विदेश चले जाते हैं। अब उस जमाने में समुद्री जहाज में ही जाना पड़ता था, तो समुद्री जहाज में बैठकर दोनों विदेश चले गए। खूब अच्छा बिजनेस किया, पैसा कमाया खूब, और सोचा कि चलो अपने परिवार वालों को सुख तो देवे। तो इसीलिए वो सारा जो कमा करके दोनों ने सोचा कि चलो वापस घर चलते हैं। घर आए, घर जाने के लिए निकले, रास्ते में सुरेश के मन में नियत में गड़बड़ हो गई। उसने सोचा मेरे दोस्त ने भी इतना कमाया है, लेकिन ये पूरा का पूरी कमाई मैं ही ले लूं, ऐसा कुछ करूं। तो जहाज के एकदम किनारे पर खड़े रहे हैं दोनों, और उसने पीछे से धक्का मार के उसको गिरा दिया। तैरना उसको आता नहीं था, वो मर गया। अब सारा उसका धन माल लूट करके घर आया। जब उसके परिवार वाले भी आए रमेश के, भाई कहाँ है रमेश, तो कहा रे उसने तो धंधे में बहुत बड़ा नुकसान किया, और इसीलिए जो है उसका नसीब कमाई में नहीं था, कुछ कमा नहीं सका। तो जब आ रहे थे मैं फिर भी उसको समझा करके ला रहा था, लेकिन उसका मन बड़ा ये हो गया कि परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उसने समुद्र में कूद करके आत्महत्या कर ली। मैं बचा नहीं सका उसको, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे ये कूद पड़ेगा एकदम से, मैं क्या करूं। तो सारा माल इकट्ठा करके वो अपने घर ले गया, शादी किया, बच्चा पैदा हुआ, सारा व्यापार को वहां भी बढ़ाने लगा। अब जो है, जो मुनीम था उनके घर का, उसको बार बार अंदर में डाउट आता रहा कि रमेश को मारा गया है शायद। तो जो भी वो धन माल लाया था, सारा हिसाब उसने रखना चालू किया और उसने सोचा कि जरूर ये आधा हिस्सा तो उसका होगा ही, रमेश का। लेकिन उसका अपने मन की बात थी, तो किसको सुनाने की उसको ये नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। लेकिन हिसाब रखने लगा। अब उसके घर में बेटा पैदा हुआ, तो जब बेटा पैदा हुआ सुरेश के घर में, तो भी मुनीम को लगे ये वही आत्मा है, ये रमेश वाली आत्मा आई है अपना हिसाब लेने के लिए। खैर, इसके ऊपर जो खर्च होता है मैं उसको अलग से लिखता जाऊं, देखूं तो सही मैच होता है कि नहीं होता है। उसने हिसाब रखना चालू किया, एक एक पाई का जो उस बच्चे पर खर्च होता था। आखिर जो है, एक महात्मा जी आए तो उसको उसकी कुंडली दिखाई। तो महात्मा जी ने कहा, इसको गरीबों की तरह पालना, अमीरों की तरह नहीं पालना। सेठ जी को समझ में नहीं आया, माने सुरेश को समझ में नहीं आया कि महात्मा ने ऐसा क्यों कहा कि गरीबों की तरह पालना। कहा, भाई मैं गरीबों की तरह क्यों पालूं मेरे बेटे को, मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो जो मांगा बच्चे ने, हर चीज उसको देते गया, अच्छे से अच्छी चीज ला करके देता था और देता गया उसको। और जो है वो बच्चा बड़ा होता गया, 20-21 साल का हो गया, उसकी शादी तय हुई। और जो लड़की के साथ शादी तय हुई, शादी के एक दिन पहले उसको सर्प ने डसा और एकदम मृत्यु की शैया पर आ गया, कोई बचा नहीं सकता था। बहुत रोने लगा वो सुरेश, बहुत रोने लगा कि अरे इसकी शादी कल है और आज ही उसको सर्प को काटना था। खूब रोया। तब वो बच्चा मुस्कुराता है और कहा, अभी तक पहचाना नहीं मुझे, मैं वही तेरा दोस्त रमेश हूं, और प्राण छोड़ दिया। मुनीम ने हिसाब देखा बराबर, जो उसका अनुमान था कि आधा हिस्सा उसी का होगा, आज उसने भोग लिया, पूरा किया अपना हिसाब और चल बसा। महात्मा ने जो कहा था गरीबों की तरह पालना, वो इसीलिए कहा था ये देख करके कि इसकी आयु छोटी है और उसको सब कुछ अगर दे दिया, जो मांगा बढ़िया से बढ़िया चीज ला करके दे दिया, तो कम उम्र में ही पूरा भोग लेगा और चल जाए, चल बसेगा। उसको एक्सटेंड करना यही तरीका है कि उसको जो मांगे नहीं दो तो उसके वो फल भोगने का समय, माना अपना हिस्सा लेने का जो समय है, वो एक्सटेंड हो जाएगा। चौथी बात कि जो लड़की के साथ उसकी शादी तय हुई थी, उसके नसीब में ये था ही नहीं, क्योंकि उसका कोई कार्मिक अकाउंट ये रमेश की आत्मा के साथ था ही नहीं। माना सारी बात अगर लॉजिकली अगर सोचा जाए, तो कर्म की गति कितनी गुही है, कोई समझ ही नहीं पाए। जब ये सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तब समझ में आता है कि हाँ, कर्म की गति अति गुही है। इसलिए कहा कि जितना हमारे बच्चे भी हमारे साथ का कार्मिक अकाउंट होगा उतना ही वो लेगा। आप एक्स्ट्रा कमाकर जमा करेंगे लेकिन उसके नसीब में ही नहीं होगा, क्या करेगा, किसके लिए छोड़ना पड़ेगा? और जिसके लिए छोड़ा क्या उसके लिए पाप कर रहे थे, और क्या ये समझदारी थी? तो कर्म की गति अति गुही है, कर्म की गति अति गुही है। बच्चे के बच्चे तक का सवाल ही नहीं आता है। और अगर वो बच्चे का बच्चा पैदा भी हो गया, कई बार हम देखते हैं कोरोना के समय में सब चले गए, वो छोटे बच्चे रह गए, दूसरों ने माल लूट लिया, बच्चों के हिस्से में कुछ नहीं आया, तो उस आत्मा का भी इतना कार्मिक अकाउंट आपके साथ होना चाहिए। भाव मेरा यही है कि जो आप कर रहे हैं, नहीं तो उसकी सजा कितनी भोगनी पड़ेगी उसका हिसाब ही नहीं है। और वो समझदारी तो नहीं हुई। तब कहा कर्म की गति अति गुह्य है। लेकिन तब मन में एक सवाल जरूर आता है, और सवाल ये आता है कि आज की दुनिया में जो पाप करते हैं वो तो मौज कर रहे हैं, और जो अच्छा कर्म करने वाले हैं वो दुखी है। ये सवाल तो होता ही है सबको कि नहीं होता है? होता है। इसके पीछे भी एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार दो व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे। एक बड़ा नेक दिल वाला इंसान और दूसरा जो था ना बड़ा बेईमान था। एक दूसरे को जानते नहीं थे, जा रहे थे रास्ते से पैदल करते हुए, अचानक रास्ते में किसी का पर्स पड़ा था। दोनों ने देखा, बेईमान ने फटाक उठा लिया और देखा तो उसमें 1000 रुपये पड़े थे। बड़ा खुश हो गया, आज तो बिना मेहनत के ही 1000 रुपये मिल गया। फिर उसके मन में आया, ये व्यक्ति ने भी देखा, मैंने भी देखा, तो उसको जाकर कहते, देखो ये बटवा जो पड़ा है उसमें 1000 रुपया है, आपने भी देखा मैंने भी देखा, ऐसा करते हैं आधा आधा बांट लेते हैं, 500 आप रख लो 500 मैं रख लूंगा। ये तो नेक दिल वाला था, ईमानदार व्यक्ति, उसने कहा जिसका गिरा होगा हो सकता है उसको ये 1000 रुपये की बहुत आवश्यकता हो। गिर गया, हो सकता है उसका एड्रेस पड़ा हो, क्यों नहीं हम उसको दे के आते हैं, उसको मिल जाएगा, कितनी दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। तो बेईमान कहता है कि देखो जिसका गिरा है, गिरने के बाद यहां से पहला नंबर हम ही जा रहे हैं, अगर उसके नसीब में होता था तो गिरता ही नहीं था, लेकिन उसके नसीब में नहीं है तभी तो गिर गया, और उसके बाद पहला नंबर हम ही चल रहे हैं और हमें मिला, माना ये अपने नसीब का है, मान लेना चाहिए। हम किसी का जेब मारने तो नहीं गए, लेकिन हमें अपने आप मिल गया, तो ये अपने नसीब का है करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा कि अपना टाइम वेस्ट करूं उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए और उसको ढूंढ करके फिर उसको दूं मैं, और उसके नसीब में नहीं है तो फिर वहां उसके घर से चोरी हो जाए, तो मैं तो गया, तो क्यों नहीं मैं ही रख लूं, तीसरा कोई ले वे उसके बदले। तो ईमानदार ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, तुमको चाहिए तो रख लो, ठीक है मैं तो खुशी से रख लूंगा, 1000 रुपया मिल रहा है क्यों मैं मना करूं। उसने रख लिया और दोनों चलते गए आगे। जैसे जैसे चलते गए तो अचानक रास्ते में कुछ कांटे थे, तो जो ईमानदार था ना उसके पैरों में घुस गया, इतना जोर से अंदर चला गया खून निकलने लगा। तो बड़ा बेईमान क्या कहता है, देख ईमानदारी की बातें करते हैं तो कांटे ही मिलेंगे, बेईमानी से जीवन जियो पर्स मिलेगा, याच का हिसाब है। अब कुछ उसी समय नमः शाम का समय था, कुछ देवताएं भ्रमण करते हैं शाम के समय में, तो वो देवताओं ने देखा कि भाई बेईमान को पर्स मिल रहा है, ईमानदार को कांटे लग रहे हैं, भगवान को जाके सुनाना चाहिए चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है। सब देवताएं मिलकर गए भगवान के पास और भगवान से कहने लगा त्राही माम त्राही माम। भगवान ने कहा क्या बात है, तो देवताओं ने कहा ये दोनों जो नीचे जा रहे हैं एक बड़ा बेईमान है एक बड़ा ईमानदार है, बेईमान को पर्स मिल रहा है और ईमानदार को कांटे लग रहे हैं, लगता है चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है। भगवान ने कहा चित्रगुप्त से कभी गड़बड़ तो होती नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में शंका आई है तो मैं चित्रगुप्त को बुला देता हूं। चित्रगुप्त को बुलाया और कहा ये दोनों का अकाउंट लेकर के आओ। चित्रगुप्त दोनों का अकाउंट लेकर के आया तो देखा कि जो बेईमान है पहले बड़ा ईमानदार था और ईमानदारी के फल स्वरूप उसको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, करोड़ों की लॉटरी लगने वाली थी, लेकिन वो लॉटरी देने से पहले अंतिम परीक्षा उसकी ली गई, देखिए अपनी ईमानदारी रखता है इस हालत में या नहीं। मौका तो देता है ना ईश्वर, देखता है परीक्षा लेता है। तो जब अंतिम परीक्षा ली गई तो वहां से उसने अपना रास्ता बदल दिया, फेल हो गया, रास्ता बदल दिया, बस बहुत हो गया ईमानदारी कुछ नहीं मिलता है, रास्ता बदल दिया और बदल दिया बेईमानी का जीवन जीने लगा, तो वो सारा फल जो है ना क्षीण होता गया होता गया होता गया, खाली 1000 रुपया बचा था, खाली 1000 रुपया बचा था, जिसको उसने समझ लिया वह क्या भाग्य है। लेकिन भाग्य में क्या था अगर उसको पता होता तो वो बेईमानी का रास्ता अपनाता नहीं, और उसी में वो खुश हो गया। तो ये उसकी ईमानदारी का फल इतना ही बचा था जो उसको मिल गया। अभी बेईमानी वाले जीवन का फल तो बाकी है, अब वो तो उसको अभी भोगना पड़ेगा क्योंकि ये हिसाब पूरा हुआ, अब उसका वो हिसाब चालू होगा जो बेईमानी वाला है। तो ये बेईमान को अगर 1000 रुपया मिला, वो उसके पुण्य कर्म का इतना ही फल जो बचा हुआ था वो उसको मिल गया और उसी में वो खुश हो गया। अभी बेईमानी का फल कहां मिला है उसको? भगवान ने ये बताया, चित्रगुप्त का हिसाब तो बराबर है। और जो ईमानदार को कांटे लगा था वो पहले बड़ा बेईमान था, और बेईमानी के फल स्वरूप उसको बहुत कड़े से कड़ी भोगना भोगनी थी, इतना कष्ट, इतना दुख दर्द भोगना था उसको। लेकिन वो फल देने से पहले उसको भी लास्ट चांस दिया, देखे बेईमान ही रहता है या सुधरने का जो भगवान ने मौका दिया उस मौका को ले लेता है। और सचमुच उसने वो मौका पकड़ लिया, वहां से अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, बेईमानी का रास्ता छोड़ दिया, ईमानदार बन गया। अब वो सारा जो कष्ट दुख दर्द था, इतना अच्छा कर्म करने लगा, सबको मदद करने लगा, जो पुण्य कर्म करने लगा, तो वो सारा क्षीण होते 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 खाली कांटा रह गया था। ये कांटा जो था ये उसकी बेईमानी वाले जीवन का उतना ही हिस्सा रहा था जो उसको लगा, और वो खून निकल गया, बेईमानी वाला खून निकल गया। अब जो ईमानदारी वाला रास्ता जो उसने लिया था उसका फल तो भी मिलेगा। इसलिए कभी कभी हम इमीडिएट प्रेजेंट को देखते हैं तो हमको लगता है अरे बेईमान को तो बड़ा फल मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है, और ईमानदार को कांटा लग रहा है। लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं, कहा जाता चित्रगुप्त हिसाब बड़ा एक्यूरेट रखता है, तो जब भगवान ने देवताओं को ये बात बताई कि देख लो दोनों का अकाउंट, तो सभी ने मिलकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त एक बात बताओ, इतने करोड़ों मनुष्य है, तुम इन सबका हिसाब इतना एक्यूरेट कैसे रखता है? तो चित्रगुप्त कहा, बड़ा आसान है। कैसे रखते? एक ही नाम का दो व्यक्ति होता है, एक ही शक्ल वाले होते हैं, तो भी तुम्हारे से गड़बड़ नहीं होती, कैसे कर सकता है तू? तो कहा, मेरा नाम ही है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, चित्र निकालने वाला कौन होता है? कैमरा होता है ना, जस्टिंग ऑपरेशन करता रहता है। तो कहा, मनुष्य का जब जन्म होता है ना, मैं उसी समय उसके अंदर एक कैमरा फिट कर देता हूं जो हर कर्म का स्टिंग ऑपरेशन करता रहता है, और इसीलिए वो सारे फोटोग्राफ्स जब अंत में आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो सारे फोटोग्राफ लेकर के मेरे पास आती है। मैं सारा जो देखता हूं, जो नीचे हिसाब करना होता है वो उस अनुसार कर देते हैं, और जिसका हिसाब दूसरे जन्म में करना होता है वो उस हिसाब से कर देते हैं। तो गुप्त रीति से वो कैमरा फिट है हर एक के अंदर, इसीलिए जब वो फोटोग्राफ्स पेश होते हैं तो कोई भी आत्मा ये नहीं कह सकती है ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं, नहीं तो मनुष्य इतना झूठ बोलने में होशियार है कि अगर ऊपर भगवान के पास भी आए और खाली लिखत में हो ना, तो वो कहेंगे ये तो मैंने किया ही नहीं, झूठ बोलने में बड़ा माहिर है, इसलिए स्टिंग ऑपरेशन ही करना पड़ता है ताकि वो बोले ही नहीं। हाँ, माइक्रोचिप डाल दिया। तो पूछा देवताओं ने, भाई वो चिप कहां डाली है? तो कहा, ये तो गुप्त रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बात बता दी तो मनुष्य जन्म लेते ही पहला काम ये करेगा, ऑपरेशन करवा के चिप निकलवा देगा। है ना। इसीलिए चित्रगुप्त जो है अपना हिसाब इतना करोड़ों मनुष्य के बावजूद भी एक्यूरेट रख सकता है और उसका हिसाब कर सकता है। तो इसलिए ये मत समझना कि बुरे कर्म करने वाले मौज कर रहे हैं और अच्छे कर्म करने वाले दुख भोग रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। चित्रगुप्त का हिसाब किताब बड़ा एक्यूरेट है, इसीलिए हर कर्म करने समय सोच के करो, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गुह्य है। और इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग के अंदर मनुष्य जब पाप करता है ना, तो भी जाने अनजाने पन में बहुत पाप कर्म हो जाता है। अब जान के तो मुझे पता है कि झूठ बोला, माना मैंने बुरा कर्म किया, ये पाप कर्म के खाते में गया, है ना। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से है? कहा गया ना, जाने अनजाने कलयुग में बहुत पाप कर्म होता है। तो जान करके तो मुझे पता है कि कोई बुरा कर्म किया, झूठ बोला, किसी को कष्ट दिया, ये मेरे पाप के खाते में गया। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हैं? तो अनजानेपन के पाप कर्म वो है जो भागीदारी में हम करते हैं, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कौन से पाप कर्म किए? कि मान लो कि एक भिखारी है, उसकी दशा को देख करके मुझे दया आ गई और मैंने दया के कारण उसको 100 रुपया 500 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया। अब 100 रुपया दे दिया, लेकिन मैंने तो सोचा मेरा पुण्य कर्म जमा हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है 17वें अध्याय में के दान करो तो भी पात्र को देख कर दान करो, सुपात्र को दान करो, कुपात्र को दान करके पाप के भागी नहीं बनो। ये है अनजानेपन के पाप कर्म, कि हमने सोचा हमारा तो पुण्य जमा हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि उसने कैसे वो 100 रुपये को यूज किया। मान लो कि उसने वो 100 रुपया से एक चाकू खरीदा और किसी का खून किया, है ना? तो उसने जो पाप किया उसके भागीदारी पार्टनरशिप हमारी हो गई। मैंने दिया तब किया, मैं देती नहीं थी तो वो पाप करता ही नहीं था। तो कई लोग पूछते हैं क्या फिर दान करना ही नहीं चाहिए? दान जरूर करो, लेकिन पात्र को देख कर दान करो। हाँ भाई, अब वो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पता लगाएं कि ये कैसे यूज करने वाला है। अरे तो भोजन ही खिला दो ना, जरूरी है उसको पैसा देना? तो कहा गया है गीता में, फिर तो नहीं दान करना समझदारी है। वही ना भाई, अपना तो चुकतू नहीं हो रहा है, उसमें किसी के साथ की भागीदारी है, कौन सी समझदारी है? तो नहीं दान करना ज्यादा बेहतर है फिर तो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है सुपात्र को ढूंढने का, नहीं करो, है ना। अच्छा, कोई बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन दो उसको, हाँ क्या हुआ? वो भी बदमाशी कर सकता है, है ना, वो भी बदमाशी कर सकता है। तो इसीलिए जो है कहा जाता कि कलयुग के अंदर नहीं दान करना ज्यादा बेहतर है। हाँ? तरीका कई है, आपके सुकर्म करने का तरीका कई है, श्रेष्ठ कर्म करने का तरीका कई है, और तरीके से आप, जैसे कहा कि भाई हॉस्पिटल में कई है ये करते हैं, आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जरूरी है, किसी की जान बचाता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको लेकर के दे दो। हाँ, या एजुकेशन संस्थाएं हैं तो वहां पर दे दो, ताकि कई ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके कहां से कहां पहुंचाते हैं, है ना। तो इसीलिए तरीके कई हैं, लेकिन किसी के पाप कर्म में भागीदारी अपनी बना देना, ये तो समझदारी नहीं। और इसलिए कई बार भागीदारी एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हमारी हो जाती है, है ना। एक होता है 1-on-1 भागीदारी, एक होता है 1-on-50 भागीदारी, मल्टीपल। कैसे? जैसे एक कसाई है, कसाई ने एक जानवर को मारा, उसका मांस बेचा, है ना। अब मांस बेचा, पहला तो पाप किया, वो मांस बेचा, बेचा तो किसी होटल वाले को बेचा, तो होटल वाले से उसकी भागीदारी हो गई। अच्छा, उस होटल के अंदर पार्टी थी, पार्टी में 50 लोग थे, 50 लोगों ने खाया, उसके साथ उसकी भागीदारी हो गई, है ना। अब भोगने का समय जब आता है ना, तब भी इकट्ठा ही आता है, वो योग बनता है। जब वो 50 लोग इकट्ठे होते तभी भोगना पड़ता है। कैसे? हाँ, कैसे? तो जैसे मान लो कि बस में कहीं जा रहे हैं आप, अब ड्राइवर कौन है? वही कसाई, पिछले जन्म में जो कसाई था इस जन्म में ड्राइवर बन गया, बस चलाने वाला। अच्छा, और वही जानवर जिसको मारा था उसका भी पुनर्जन्म हुआ, वो दौड़ के आता है और उसको बचाने जाता है, और बस जा रही है पहाड़ी पर, खाई में गिरी, है ना, जानवर तो निकल गया लेकिन वो सारे गिरे। अब किसको कहां लगा, किसको कहां लगा? जिसने जो हिस्सा खाया था ना, उसको वही लगता है, है ना। अब ये 50 लोग जो भागीदारी में थे, वही उस बस में इकट्ठे हुए। अच्छा, जो उस भागीदारी में नहीं थे, इतनी ऊंची खाई में गिरने के बाद भी उसको एक खरोच तक नहीं आती है, कहते वो भागीदारी में था ही नहीं, इसलिए उसको खरोच तक नहीं आई, है ना। अच्छा, उसके बाद जो भागीदारी में नहीं था, अगले स्टॉप पर उतर गया, या जो भागीदारी में नहीं था उसकी बस मिस हो गई, और वही लोग इकट्ठे थे, और फिर लोग क्या कहते हैं, अरे ड्राइवर की गलती के कारण 50 निर्दोष को इतना हॉस्पिटल में तकलीफ भोगनी पड़ी। निर्दोष एक भी नहीं था, निर्दोष एक भी नहीं था, सारे दोषी थे। जो निर्दोष था उसको खरोच नहीं आई, जो निर्दोष था वो बस मिस कर गया, जो निर्दोष था वो अगले स्टॉप पर उतर गया, वो निर्दोष थे। इसीलिए कहा ना कि बस भाई, बस में जो थे वो थोड़े लोग थे तो बस में गए, जो और थोड़े थे कार में जाते हैं, वो थोड़े थे बस में गए, और ज्यादा होंगे ट्रेन डील डीरेल हो गई, अब वही डब्बे गिरे क्यों, बाकी सब तो ठीक खड़े हैं, वही 3-4 डब्बे क्यों गिरे, डीरेल क्यों हुए, हम सोचते हैं गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है या उसके कारण से यह हुआ, हादसा हुआ। नहीं, वो कर्म का फल भोगने का समय जब आया, वही लोग इकट्ठे हुए और उनको उसी समय इकट्ठा फल भोगना ही है। वो भी जिम्मेवार है ना, उसमें ये था, वो भी उसको मारा होगा जिस तरह से भी मिलकर के सभी ने। ये कर्म की गति अति गुह्य है, इसलिए कहा जाता है ये कर्म की गति अति गुह्य है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है ना। इसी तरह कोई फ्लाइट में जाते हैं, इकट्ठे सारे के सारे गए फिर, है ना, और उसमें भी अगर कोई निर्दोष है तो इतना ऊपर से गिरने के बाद भी कुछ नहीं होता है। बीच में आपने हाँ सुना होगा, वो बच्चा बैंगलोर से जब फ्लाइट निकली तो क्रैश हुई, जब उसमें आग लगी तो ऊपर से एक बच्चा 6 महीने का बच्चा गिरा और एक खेत में जो घास का वो रखा हुआ था उसके ऊपर सेफ लैंडिंग कर लिया उसने, वो एक ही बच्चा बच गया, बाकी सब मर गए थे, है ना। तो जो निर्दोष था वो उसमें भी बच जाएगा, इतने ऊंचाई से भी वो बच जाएगा। तो इसीलिए दोषी सारे जब इकट्ठे हो जाते तब वो घटना घटती है, ये कर्म का हिसाब है और उसको कोई नहीं रोक सकता है। उस चीज को कोई कितना भी रोकने का प्रयत्न करे रोक नहीं सकता है। यस, कोरोना भी यही कारण से आता है। बिल्कुल मिल सकता है, 10 जन्म के बाद भी मिल सकता, 25 जन्म के बाद भी मिल सकता है। वो योग आना चाहिए सबका इकट्ठा, वो सारी आत्माओं को इकट्ठा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है कर्म की गुह्य गति, समझ में आई। अच्छे लोगों को पास में रखने से भी वो नहीं बचा सकते, वो कहा जाता है ना कि एक बार कुछ लोग जा रहे थे, अचानक बारिश चालू हुई तो सब एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तो बार बार बिजली गिर रही थी उस पेड़ पर ही, तो लोगों ने कहा जरूर यहां कोई ऐसी आत्मा है जिसके कारण, नहीं बुरी आत्मा है पाप कर्म करने वाले, उसके कारण कहीं हम सब मारे ना जाए। तो कहा कि ऐसा करे, सामने मंदिर है, दौड़ करके जाए, है ना, और जो ऐसा पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी, उसके कारण दूसरे तो नहीं मरेंगे, है ना। तो कहा कि ठीक है, अभी हर कोई डरने लगा, पाप तो किसने नहीं किया है जीवन में, हर कोई डरने लगा। तो वो जैसे ही दौड़ करके जाता था मंदिर तक, जो बच गया समझ मेरा तो कुछ नहीं हिसाब है, है ना, और जाकर के वापस आना था, तो सोचा मेरे ऊपर तो गिरी नहीं, माना मेरा तो हिसाब नहीं है, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन सारे तो पाप करते ही है जीवन के अंदर, लेकिन उसमें एक पुण्य कर्म करने वाला भी था, वो जब निकला तो बिजली गिरी और सारे लोग खत्म हो गए, वो एक ही बच गया, है ना। तो इसीलिए जो है हमें मालूम नहीं है कि हमारा पुण्य, एक व्यक्ति का पुण्य भी कई बार सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो निकलेगा कि उसके ऊपर गाज गिरनी ही है। तो इसीलिए जो है हमेशा अपने पुण्य के खाते को बढ़ा के रखो, तो पुण्य का खत, हाँ ये भी एक बार मान्यता है कई बार कई लोगों के अंदर कि कोई बात नहीं, पाप करते चलो, फिर कुछ दान करो, मंदिरों में इधर उधर दान कर लो तो पुण्य हो जाएगा, वो पाप को वॉश कर लेगा। ऐसे कोई पाप को वॉश नहीं करता है। मान लो कि मैंने आपसे 500 रुपया उधार लिया, मैंने आपसे 500 रुपया उधार लिया और मैं उसको दान कर देती हूं, फिर जब आप मांगने आते हो भाई मेरा 500 रुपया लाओ, तो मैं कहती हूं वो तो दान कर दिया ना, अच्छे काम में ही लगाया। अब तुम ये समझ लो कि मैंने जो अच्छे कर्म किया तुमने भी किया, अच्छे काम में ही गया ना 500 रुपया, तो भूल जा। अभी आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे भाई अच्छा कर्म करना होगा मैं खुद अपने हाथों से करूं ना, तू मेरा तो दे दे हिसाब। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, भाई मेरा हिसाब तो तू दे दे, मैं करूंगा ना पुण्य करना होगा, मंदिरों में देना होगा, मैं खुद दूंगा ना, तेरे देने से मेरा भी हो गया, ये मैं नहीं मानता। कहते हैं कि नहीं कहते कि मान लेंगे, चलो ठीक है तुमने दे दिया, अच्छे काम में लगाए, माफ कर दिया 500 रुपए, छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। ठीक इसी तरह भगवान भी कहते हैं जो अच्छा कर्म आपने किया उसका भी फल मिलेगा, लेकिन उसके कारण बुरा फल खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। जो आपने उधारी खाता किया है वो भी आपको चुक तुक करना ही पड़ेगा, जिसके साथ का है वो चुक तुक करना ही पड़ेगा, वो नलीफाई नहीं होता है, नहीं होता है। बुरे कर्म का भी चुकाना ही पड़ता है और अच्छे कर्म का भी भोगना ही पड़ता है, दोनों का फल मिलेगा। ये नहीं कि बुरा कर्म किया तो अच्छा कर्म करने के बाद वो उसको धुल देगा, ऐसे धुलता नहीं। वो अपने पुण्य कर्म को बढ़ाया था खुद में, ये नहीं कि इसके साथ का हिसाब मैंने इधर चुका दिया तो हो जाएगा, नहीं, मुझे ही उसको अच्छा करना पड़ेगा, अपने लिए ही अच्छा करना पड़ेगा, दूसरे का साथ मिलकर के ये नहीं। तो हमारे अधिकतर पाप कर्म जो होते हैं ना वो भागीदारी में चलते हैं। पुण्य का भी होता है लेकिन बहुत कम, बहुत कम है, कभी कभार हो गया तो बात अलग है। जैसे कई बार माता पिता नहीं होते हैं बच्चों के द्वारा दान कराते हैं तो होता माता, लेकिन उसके तो जैसे इकट्ठा मिल करके देते हैं, ये है पुण्य कर्म की भागीदारी। जो भारत के अंदर ये एक संस्कार है, एक संस्कृति है कि माता पिता पूरी फैमिली इकट्ठे होकर के सब हाथ लगा देते हैं और उसको दान करते हैं, तो ये पुण्य कर्म की भागीदारी है। लेकिन अक्सर मनुष्य पाप कर्म भागीदारी में करता है, पुण्य तो अकेला ही करता है, पुण्य वो भागीदारी में बहुत कम करता है, पाप कर्म भागीदारी में होता है। क्रोध अकेला तो नहीं हो सकता है, किसी के ऊपर ही क्रोध करना पड़ेगा, किसी के साथ ही भागीदारी में करना। लोभ भी जब करते हैं तो किसी को तो आपने कष्ट दिया, तभी लोभ आपका लोभ पूरा हुआ, तो किसी को लूट करके ही तो लोभ पूरा होता है, तो भागीदारी में ही होता है। पाप कर्म ज्यादातर भागीदारी में होते हैं, इसलिए चुकाने के लिए भी भागीदारी में ही चुकाना पड़ता है, और पुण्य कर्म अक्सर मनुष्य अकेला करता है, वो किसी के साथ बहुत कम बांटना चाहता है, वो बांटना कम चाहता है। तो इसीलिए उस पुण्य कर्म जो खुद के लिए किया उससे उसने जो पाप कर्म खुद से किया था वो चुक्त हुआ, वो चुक्त होता है, है ना। बाकी हाँ यहां पाप करो लेकिन वो चुकाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो भागीदारी में हुआ इसलिए वो चुकाना पड़ता है, और पुण्य कर्म का फल भी मिलेगा। हैं?
अगर हम अच्छा कर्म करेंगे बुरा कर्म
करें नहीं, मनुष्य योनि में ही जैसा बीज वैसा फल। तो इसीलिए जो कर्म आपने मनुष्य योनि में रह करके ही किया है तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका हिसाब मनुष्य से ही है ना। इसलिए पुण्य माइनस नहीं होता, उसका फल भोग करके आप तृप्त होते हैं। हाँ, जो सुख सुविधा आदि जो आपने पाया जीवन के अंदर, ये आपके पुण्य कर्म का फल जो प्राप्त किया उसे सुख मिला आपको, तो पुण्य कर्म का सुख मिलता है, वो माइनस के खाते में नहीं जाता। हाँ, कुछ कर्मों को वो नलीफाई करता है, कुछ कर्मों को करता है, लेकिन वो भागीदारी वाले कर्म को नलीफाई नहीं करता है। कुछ कर्म माना जैसे कोई बात में कई लोग झूठ बोल देते हैं, नॉमिनल जो है वो क्लियर हो जाता है, समझो। छोटा छोटा वाला, बड़े का नहीं। ठीक है, अच्छा। बाकी तो कर्म की गति तो और भी गुह्य है, जितना उसको समझो उतना और ही आप समझते जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे रूप से उसको समझाया आज आपको, अच्छा लगा है? नहीं, वो कहा जाता है कि पेरेंट्स का पाप कर्म बच्चे भोगते हैं, ऐसा नहीं। हर आत्मा का हिसाब अपना होता है। मेडिटेशन से, हाँ, इसको जलाना पड़ता है, जैसे पाप कर्म को जलाना पड़ता है। अब जलाएंगे कैसे, तो कहा जाता है योगाग्नि, योगाग्नि है, योग अग्नि का काम करता है। इसीलिए मेडिटेशन में जब बैठते हैं और योग की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उस अग्नि से वो पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं, उसी से भस्म होता है, बाकी नहीं है। बड़े से बड़ा पाप कर्म को भी भस्म कर सकते हैं। योगाग्नि ही चाहिए उसके लिए। हैं? उसका फल तो मिला ही होगा उसको, ऐसा हो नहीं सकता है नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो उसने ध्यान मेडिटेशन आदि करके उसको जलाया, खत्म कर दिया, है ना, जलाना जरूरी है। ये बड़े से बड़े पाप कर्म को जलाने की ताकत सिर्फ योग, सिर्फ ध्यान में है, बस और किसी में नहीं। हाँ, सरेंडर होगा तभी तो आप ध्यान कर सकेंगे, ध्यान करेंगे तभी सरेंडर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज वाल्मीकि सरेंडर कब हुआ? माना रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से सरेंडर हुआ, और सरेंडर के बाद योगाग्नि से उसने जलाया, अपने सारे पूरे कर्म को जला दिया उसने। पूर्व जन्म के याद नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर वो याद आने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाए। हाँ, एक एक। हाँ, वो बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को याद आ जाता है कि भाई हाँ ये फैमिली में था, इतना याद आता है, बाकी और कुछ याद नहीं आता है उसको। हाँ, ऐसे कई किस्से हैं जिनको पूर्व जन्म याद आता है, और पूर्व जन्म याद आने के बाद वो बताता है और सत्य होता है। हाँ, ज्यादा नहीं, बहुत कम। नहीं, अच्छे कर्म का फल नहीं। ऐसे कहा जाता है कि आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है, जहां शरीर छोड़ती है तो उस शरीर से उसका लगाव, वो लोगों से उसका लगाव होता है, तो इमीडिएट नहीं चली जाती है, वो रहती है वहां पर, और 13 दिन के बाद जब वो विधि करते हैं हा? उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो 13 दिन के बाद वो देखती है अरे ये तो सब भूल गए मेरे को, तो उसका भी लगाव टूट जाता है, उसका भी जो कनेक्शन था वो टूट गया, उसको भी आता है मन मेरे से किसी का प्यार नहीं है, ये सब मेरे को कोई भी याद नहीं, तो उसको एकदम जैसे झटका लगता है और फिर टूट जाता है, तो फिर वो चली जाती है। इसलिए 13 दिन तक वो आत्मा वहीं रहती है क्योंकि उसका लगाव है। लेकिन जो आत्माएं 13 दिन के अंदर चली जाती है, 1-2 दिन में ही चली जाती क्योंकि उसका आगे का चोला उसको बुला रहा है, तो उस आत्मा को पूर्व जन्म याद रहता है। जो 13 दिन के अंदर जाती है उनको पूर्व जन्म याद रहता है, जो 13 दिन के बाद जाती है उनको कभी पूर्व जन्म याद नहीं रहता, क्योंकि उसने देख लिया ये सब स्वार्थी थे, स्वार्थ से मुझे, क्योंकि आत्मा जब शरीर के बिना होती है तो उसको हरेक के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, स्वार्थ की है निस्वार्थ की, वो सब दिखाई देता है, उसको सारा स्कैनिंग हो जाता है, सबके अंदर के विचारों तक का स्कैनिंग हो जाता है। और इसीलिए जब ये देखती है आत्मा कि अरे जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया आज ये लोग इतने स्वार्थी है, तो उसका मोह टूट जाता है। तो मोह टूटने के बाद फिर वो जाती है तो उसको पूर्व जन्म याद नहीं आ रहता है। लेकिन जो 13 दिन के अंदर जाती है वो स्कैनिंग नहीं कर पाती है क्लियर, उसके पहले ही उसको चले जाना पड़ता है, उसको पूर्व जन्म वो बहुत कम रहते हैं। ऐसे प्रेत आत्मा ही कहा ना उसको, माना शरीर बिना जो है भटकने वाली आत्मा उसको प्रेत आत्मा कहते हैं।
न्यू बॉर्न बेबी वो टाइम में पैदा हो गया वो आत्मा उसके अंदर भी हो सकता है
क्या? हुआ
एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ नहीं प्रेगनेंसी, एक टॉप प्रेगनेंसी वो टाइम में 13 दिन के अंदर जब डिलीवरी होने वाले है तो अंदर में वो आत्मा तो देखेगा सब कोई खराब है, ये बच्चा हो गया जो पैदा हो गया उसमें
नहीं, उसमें नहीं जा सकते, उसमें नहीं जा सकते क्योंकि उस समय वो बच्चा बहुत पावरफुल होता है। प्रेतात्मा उसको उस योनि में अपना कष्ट भोगना ही पड़ता है क्योंकि उसने कई लोगों को, जैसे कई लोग जैसे जादू टोना नहीं करवाते हैं, जादू टोना करा के किसी को दुख देना, किसी को लूट लेना, किसी का जीवन में कष्ट दे देना, तो वो आत्माएं प्रेतात्मा योनि में जाती है और उसको इतना कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी मना किसी भी लालच में आकर के या किसी से दुश्मनी निकाल, जादू टोना कभी नहीं कराना चाहिए क्योंकि जिसने कराया उसको उस योनि में खुद भोगने के लिए जाना पड़ता है, वो खुद प्रेतात्मा बनती है, उसको जन्म नहीं मिलता है और उसको बहुत कष्ट होता है उस योनि में। इसीलिए जो जादू टोना कराता है और करा के किसी आत्मा के साथ अपना हिसाब मना यहां तो ये कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको जन्म नहीं मिलता है, उसको खुद प्रेतात्मा की योनि में जाकर के बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। बहुत कई बार तो ऐसा होता है कि वो खुदकुशी भी उसने तय किया हुआ है, वही उसके कर्मों का हिसाब लास्ट चुकतु करने का वही तरीका था। इसलिए हरेक के लिए ये नहीं कह सकते कि उसको भोगना पड़ता है, लेकिन किसी किसी का वही एक तरीका है कि अपना जो हिसाब सेटल करने का। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं, वो देखता है ना कि भाई एक व्यक्ति मुझे प्यार से याद कर रहा है, बाकी तो सारे स्वार्थ से ही याद कर रहे हैं, किसी को मतलब से ही है सबका, तो उसको अंदर से ये आता है, उसका मोह नष्ट होता है। एक व्यक्ति के प्रति वो जब देखता है तो ठीक है ये आत्मा, तो वो दुआ देके जाती है उस आत्मा को। हाँ, रिश्ता खत्म होता है, हिसाब खत्म हो गया उसका। हाँ, 13 दिन तक रहती है तो भी वो आती है घर में ही, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को देखेगी ना, स्कैनिंग तो सारा करेगी ना, मोह तो नष्ट करना पड़ेगा ना उसको। ऐसा है, रोना माना ही, अपने कर्मों का फल भोगना, तो उसको याद रहता है दो, कम से कम उसको 6 महीने तक, जब तक उसकी वाचा नहीं खुलती है तब तक उसको सब दिखाई देता है, पूर्व जन्म का भी अपने कर्म दिखाई देते हैं, मैंने क्या क्या कर्म किए सब दिखाई देता है उसको, इसलिए वो दुखी होते हैं। भले नहीं करते हैं, ये विधि नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा तो रहती है ना। हाँ, हाँ, कब्र खुलने का, कयामत का समय, ठीक है। अच्छा, ओम शांति है।